ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम। आप सबको स्वागत है। तो हमको आध्यात्मिकता का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ है नम्रता बहन। तो हम नम्रता बहन का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो कुछ समय के लिए आप और सब बातों को भूल जाइए, मतलब कुछ समय के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए भूल जाइए। और यहाँ आप आए हैं तो अच्छे से प्यार से जो भी दीदी आपको पूछ रही हैं उसका आंसर देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आज शाम को इनॉग्रल होगा, उसके पहले ये तैयारी है हमारी, मन बुद्धि सब तैयार रहे। नम्रता बहन पिछले 20 साल से ज्ञान में है, ज्ञान मार्ग में, और कई सेवाएं बहुत सहज रीति से करते हैं। तो बहुत सरल रूप से आपको समझाएंगे भी और बहुत प्यार से भी समझाएंगे, धीरज से और शांति से आप सुनकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको इस सत्र के लिए स्वागत है और आगे के इस यात्रा के लिए भी स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। सभी एक साथ कहेंगे ओम शांति। आप सभी जैसे सवेरे से सुन रहे हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो समय अनुसार माउंट आबू की विशेष तपस्या का स्थान कहो, वरदानों का स्थान कहो, आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा का स्थान कहो, ऐसे परिसर में आप सभी यहाँ कुछ दिनों के लिए अपने सभी जो व्यस्त कार्यक्रम हैं उन सभी से छुट्टी लेकर यहाँ पहुँच गए हैं, है ना? तो आप सभी स्वयं के लिए एक बार ताली बजाएं। जैसे आप सभी को रहने का स्थान ठीक तरीके से मिल गया है, हाँ जी, ओके। सभी ने बहुत प्यार से प्रभु प्रसाद ग्रहण किया, नाश्ता किया, हाँ ठीक है। सबका स्वास्थ्य ठीक है, हाँ जी। तो ये सवेरे का जो आपका सुंदर और श्रेष्ठ समय है, इसमें आप सभी जब से आए हुए हैं यहाँ कई बातों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इन सब बातों को महसूस करते जा रहे हैं, आपके अपने अंदर में ऐसा होता है कि अच्छा, हमें ऐसे करना है, ऐसे बनना है, ऐसा वातावरण बनाना है। ये सारी फीलिंग्स, ये उमंग उत्साह हमारे अंदर में देखते देखते आता जा रहा है। जैसे हम सब जो यहाँ पर 3 दिन के लिए भरपूर होने के लिए आए हैं, तो हमें यही अंदर में चाहना होती है कि भाई हम जहाँ भी रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, कार्य करते हैं और जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो वातावरण सदा कैसा हो, यहाँ के जैसा हो, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, पर हम सभी के मन में ये बात भी आएगी कि यहां तो हम बैठकर सुनने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि रहने की व्यवस्था कोई और देख रहे हैं, भोजन बनाने की व्यवस्था कोई और देख रहे हैं, कराने की व्यवस्था कोई और देख रहे हैं। हमें तो केवल क्या करना है, क्या करना है, इसका लाभ लेना है। लेकिन जब हम अपने स्थानों पर जाते हैं तो हम उन सभी कार्यों में खुद इन्वॉल्व होते हैं, और उन कार्यों को करते समय हमें अपने अंदर में क्या बातें भरनी है। तो वास्तविकता में हम ये बातें, ये चीजें यहां देखने और सुनने के लिए आए हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन के अंदर यही भावनाएं होती हैं कि भाई हमारा स्थान सकारात्मक हो, शुद्ध हो, प्यार से भरा हुआ हो, और जहां चारों ओर शांति ही शांति हो। ऐसा हम सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, यस और नो? कोई भी ऐसा चाहता हो कि भाई हमारा स्थान जो है स्ट्रेस से भरा हुआ हो? कोई ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा। हर एक के मन में ये भाव आएगा। तो ऐसा स्थान बनाने के लिए जहां चारों ओर स्नेह हो, शांति हो, सकारात्मकता हो, ऐसे स्थान को बनाने का कार्य हम सभी को करना है, और इसीलिए हम सभी यहां पर खास समय निकाल करके आए हुए हैं। तो ये कार्य हम कैसे कर सकेंगे? तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियां, ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, समय प्रति समय हमें लाभ मिलता है, साथ साथ में हम रीड करते हैं, और कई बार तो ये बातें हम आपस में एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, परंतु वो हमारा जीवन बन जाए, इसके लिए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि घर में कोई भी फंक्शन हम करते हैं, अपने सोसाइटी में कोई फंक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जैसे आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई हमें कोई एक बहुत बड़ा फंक्शन करना है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, कोई कार्यक्रम को हमें आगे करना है, तो सब मिलकर के सबसे पहले क्या करते हैं? तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति के आधार से हम सभी बहुत लाइटिंग करते हैं, करते हैं सभी, घरों में, सोसाइटीज में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लाइटिंग्स होती है, डिफरेंट वैरायटीज से उसे श्रृंगार किया जाता है। तो आज भी जब हम इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं, आध्यात्मिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहां भी हमें अलग अलग ज्ञान की बातों से हमारे अंदर इनलाइटमेंट अर्थात दिव्य प्रकाश की चेतना को जागृत किया जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में खास करके दीपक जलाने का, लाइटिंग करने का बहुत ही बड़ा विशेष स्थान रखा गया है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। वो अंधकार जहां हम स्वयं को न जानते, और वो प्रकाश जहां हमें स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसे कहेंगे कि एक बार एक गुरु और शिष्य तपस्या करने के पश्चात एक घने जंगल के स्थान से जा रहे थे और जाते जाते गुरुजी ने कहा कि हम कुछ देर बैठ करके यहाँ विश्राम भी करेंगे और साथ साथ में कुछ ज्ञान चर्चा भी करेंगे। तो उन्होंने एक स्थान को निश्चित करके वहाँ एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का स्थान चुन लिया और कुछ देर बाद जंगल में एक हवा की आंधी आई तो शिष्य ने बचाव के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू किया और उस आंधी से बचने के लिए अपने लिए एक स्थान निश्चित करके वहां छुप गया। जैसे ही वो आंधी का समय चला तो शिष्य को ध्यान आया कि मैं तो आंधी से बचने के लिए यहां वहां भागा पर मैंने गुरु की सुध नहीं ली। तो आंधी हटने के बाद जब वो अपने गुरुजी के स्थान पर पहुंचने लगा तो उसने देखा कि गुरुजी अभी भी वहां ही बैठे हुए हैं। तो विनम्रता से हाथ जोड़कर उसने क्षमा याचना की और कहा कि गुरुजी मुझे माफ करिएगा, वो आंधी के कारण मैं स्वयं का स्थान चुनने में बिजी हो गया तो मैं यहां वहां भागने लगा और मैंने आपके लिए ध्यान नहीं दिया। तो गुरुजी ने प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहा कि कोई बात नहीं, आपको पता है जब आंधी आई थी ना तो हम दोनों भागे थे। गुरुजी ने क्या कहा क्या कहा गुरुजी ने, जब आंधी आई तो दोनों भागे थे। तो शिष्य ने कहा कि आप तो अपने स्थान पर ही बैठे हुए हैं, भागा तो मैं ही था। तो गुरुजी ने समझाया कि आंधी के आने पर हम दोनों ही भागे, बस अंतर इस बात का रहा, फर्क इस बात का रहा कि आपने बाहर भागकर अपने लिए स्थान ढूंढा और मैं अपने अंदर भागा। कहां भागा? अपने अंदर भागा और मैंने अपने अंदर एक स्थान को निश्चित किया। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, परिस्थिति आने पर, समय आने पर, बाहरी भटकाव से हमें अंतर के सुनिश्चित और सुरक्षित स्थान पर लेकर आने का कार्य करती है, जिसका अभ्यास करने के लिए ही, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए ही हम सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जब हम सभी अपने अंदर की तरफ आते हैं तो वहां एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही शुद्ध प्रकाश है और वहां पर पहुंचने पर हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आध्यात्मिकता वास्तविकता में एक ऐसा सकारात्मक विचार स्वयं के लिए है जहां हमें अपने आप को देखना सिखाती है, अपने आप को समझना सिखाती है, अपने आप से बातें करना सिखाती है, जिससे हम जितना जितना अपने अंदर की ओर जानते जाते हैं उतना हमारा बाहर भटकना बंद हो जाता है। तो इसलिए अध्यात्म का अर्थ ही है स्वयं का अध्ययन करना। जैसे सवेरे बहन बता रहे थे कि हम सब स्टूडेंट हैं, है ना, यहां पर आकर हम क्या बन गए, स्टूडेंट बन गए, ईश्वर के स्टूडेंट। तो ईश्वर हमें अपने आप से जुड़ना सिखाते हैं। जब शुरू शुरू में पहली बार मैं यहाँ आई थी छोटेपन में, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस परिसर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सकारात्मक सुविचार लिखे हुए हैं। देखा किस किस ने देखा, आसपास बहुत सुंदर सुविचार लिखे हुए जी, है ना। तो मैं भी जब शुरू में आई थी तो यहाँ बहुत सुंदर एक विचार हमने पढ़ा था, आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर आपका ध्यान करेगा। तो इसके ऊपर भी हमने अभ्यास किया कि मुझे किसका ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। तो मेरा ध्यान रखने वाला कौन है, मेरा ध्यान रखने वाला कौन है? तो फिर मुझे स्वयं की चिंता, स्वयं की चिंता नहीं होगी। तो ऐसी ही एक बात आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। एक बार एक ऐसा राज्य था, एक ऐसी राजधानी थी जिसको सभी कहते थे कि वो एक श्रापित राजधानी है, और उसमें कुछ इस प्रकार की नेगेटिविटी थी कि जहां कहा गया कि हर 5 वर्ष के बाद यहां इस राज्य का जो राजा है उसे चेंज होना है, और वो राजा बदल करके उस राज्य के बाहर एक बहुत गहरी नदी है और उसे क्रॉस करके वहां उस पार एक जंगल में जाना है, और वो इतना घना जंगल है कि लोग नाम भी सुनते डरते हैं। तो बहुत वर्ष बीते, कई राजा बदले 5-5 वर्षों के अंदर, और हर राजा को ये देखा गया कि जो भी उस गहरी नदी के उस पार के घने जंगल में गया वो राजा फिर वापस कभी नहीं आया, या उसका कोई भी प्रकार की जो उसकी बातें हैं वो सुनने में नहीं आई। तो और ही सभी के अंदर एक प्रकार का चिंतन चलने लगा, विचार चलने लगा कि वहां जाना माना अंत है, कि वहां से वापस कोई नहीं आ सकता। तो राज्य के अंदर कुछ वर्षों के बाद बहुत इस तरह का वातावरण फैल गया, बात फैल गई कि अब वहां पर कोई भी राजा बनना नहीं चाहता था। अब आप सभी जानते हैं कि जब किसी राज्य का राजा ना हो, घर में कोई मालिक ना हो, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, तो राज्य किस तरह से बिगड़ जाता है, प्रशासन बिगड़ जाता है, सुव्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। और राजा के अंदर में जो भी मंत्रीगण होते हैं, जो कंट्रोलर संभालने वाले होते हैं, तो वहां हर एक व्यक्ति का अपना अपना राज्य चलता है, जिससे प्रजा बहुत ही भटक जाती है। तो इस तरह से पूरे राज्य में जो है ना, एक अलग प्रकार का वातावरण फैलने लगा। हर एक के अंदर भय, हर एक के अंदर चिंता, किसी के साथ कोई मेल जोल नहीं। और ऐसे में एक व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेस के साथ घर में आता है, और उसका बेटा उसे देखता है कि मेरा पिता बहुत ही चिंता में आया है। तो वो पिताजी से पूछता है, और उसे ये सारी बातें जब पिताजी एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी समझने की कोशिश करता है, परंतु उसके पास एक युक्ति होती है, और वो युक्ति ये थी कि उस बच्चे का दोस्त था जिसे वो कहता था खुदा दोस्त, और अपने मन की हर बात वो उस दोस्त के साथ शेयर करता था। तो ये बातें भी जाकर उन्होंने शेयर की, तो खुदा दोस्त ने, उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि ऐसा करो, आप राजा बन जाओ। उसने कहा अच्छा, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, मेरे फादर की चिंताएं खत्म हो जाएंगी? उन्होंने कहा यस, हो जाएगी। तो वो बहुत खुशी से घर जाता है, अपने परिवार के साथ ये बात शेयर करता है कि मुझे राजा बना दीजिए, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो पिताजी ने क्या किया होगा, राजा बना दिया होगा? क्या कहते हैं सभी, क्या कहा होगा पिताजी ने? उन्होंने कहा आपको पता भी है कि जब आप राजा बनेंगे तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, क्या होगा? हाँ, नदी के उस पार घने जंगल में जाना है और वहां से कभी वापस नहीं आता है कोई भी। और आप तो हमारे कुल का दीपक हो, घर का चिराग हो, आप तो हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, सहारा हो, और आप ही चले जाएंगे, आप ऐसे करेंगे, हम आपको कभी राजा नहीं बनाएंगे। फिर वो वापस अपने फ्रेंड के पास जाता है और कहता है, अच्छा आपको ये बात पता है कि भाई वहां घने जंगल में जाना होता है, वहां से कभी नहीं आता, आप मुझे मारना चाहते हो क्या? तो फ्रेंड खुदा दोस्त ने कहा, कभी मैंने आपके लिए ऐसा कहा है? तो कहा नहीं। कभी किया है? कहा नहीं। तो हमने तो हमेशा आपकी अच्छी बात की बात की है? तो कहा हाँ, यस। तो फिर आप करो तो सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, पक्का? उनका यस, पक्का। वो फिर जाता है अपने घर में और वो जिद कर लेता है, वो दृढ़ संकल्प कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि जो मुझे मेरे खुदा दोस्त ने कहा है, फ्रेंड ने कहा है, वो मुझे करना ही है। और उसके दृढ़ संकल्प के आधार से, दृढ़ निश्चय के आधार से उसे राज्य का राजा बना दिया जाता है। बहुत सुंदर कॉरोनेशन सेरेमनी होती है, सब जगह आनंद खुशी का माहौल। और फिर राजा बनने के बाद वो वापस अपने दोस्त के पास जाता है कि क्या नेक्स्ट स्टेप करना है। तो उन्होंने कहा कि अब पूरे राज्य में ये अनाउंसमेंट करवा दो कि जो भी इस राज्य की प्रजा है, सभी A to Z, सभी अपनी अपनी विशेषताएं लिख करके हमें चिट्ठी में दे दे दें। जिसको जो आता है, जो व्यक्ति जो भी कर सकता है, कार्य के अंदर, विचारों में, सब कुछ। तो ये पूरे राज्य में उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी कि आप जो है सभी अपनी अपनी विशेषताएं लिख करके राजा के पास रखवा देनी है। सबने कार्य करना शुरू कर दिया, सब बिजी हो गए, क्योंकि राज्य के अंदर ये चर्चाएं भी थी कि अच्छा पता है ये बच्चा अभी ऐसे राजा बनाए, ये राजा बनाए, अच्छा ये क्या करेगा, होता है ना ऐसे सब शेयरिंग। तो ये शेयरिंग को बिजी कर दिया अपनी अपनी क्वालिटी, अपने अपने विशेष कार्यों के अंदर। तो जैसे ही सब चिट्ठियां आई, सबको अलग अलग किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य में लगा दिया, उनकी हर विशेषताओं। तो नदी से उस पार जाने की व्यवस्थाएं बनाई गई, गार्डन्स बनाने की बातें बताई गई, कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारे महल बनाने की बातें की गई। ऐसे कई प्रकार के एरियाज जो है नदी के उस पार वाले जंगल में, उसे बहुत सुंदर सुंदर जो बातों से, कार्यों से उसको निर्माण किया गया। और ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। और 5 साल के बाद क्या होना था, उस राजा को कहाँ जाना था, राजा को कहाँ जाना था, नदी के उस पार वाले जंगल में। अब वहां जंगल रहा, क्या बन गया, एक सुंदर शहर का निर्माण हुआ, एक सुंदर राजधानी का निर्माण हुआ। तो उस राजा ने अनाउंसमेंट की कि देखो हर 5 साल के बाद आपको वहां शिफ्ट होना ही है, तो क्यों नहीं हम सभी बहुत प्यार से नदी के उस पार वाले शहर में शिफ्ट होते हैं, वहां अपनी एक बहुत सुंदर वरदानों से, अपने कर्तव्यों से निर्माण की गई भूमि में रहने का सुख अनुभव करते हैं। तो चाहे मैं यहां रहूं तब भी मैं राजा, चाहे मैं नदी के उस पार जाऊं तब भी आप और हम सभी मिलकर राजा बन सकते हैं। तो सभी ने राज्य के अंदर सहर्ष उस निमंत्रण को स्वीकार किया और सभी कहां शिफ्ट हो गए, श्रापित भूमि से कौन सी भूमि की तरफ, ब्लिसफुल, ब्लेसिंग्स वाली, जिनका निर्माण उन्होंने स्वयं अपने सकारात्मक विचारों और कर्तव्यों से किया। तो आज का आपका ये दिन और आज से लेकर के आने वाले दिन, आप यहां से किस तरफ जाने वाले हैं? किस तरफ जाने वाले हैं? सभी वरदानी जीवन की ओर जाने वाले हैं। तो आध्यात्मिकता के द्वारा आप अपने अंदर में, जैसे हमें कहा गया कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, स्वयं के प्रति, स्वयं को देखना, तो सबसे पहले पहले उन्होंने ये सिखाया कि स्वयं को राजा समझो, आप राजा बनो। तो मुझे किसका राजा बनना है? दूसरों का या स्वयं का? किसका राजा बनना है जी? हाँ, स्वयं का राजा बनना है। तो यही हमें आध्यात्मिकता सिखाती है, जो इसकी प्रैक्टिस हम सभी करेंगे। सभी के हाथ अपने फ्री कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और हमारे पीछे पीछे सभी को बोलना है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते, आंखें बंद करें, हाथों की इस ऊर्जा को महसूस करें। अपने शरीर में एक सफेद सकारात्मक प्रकाश को सकारात्मक ऊर्जा को अपने आप को एक शक्तिशाली विचार दे रहे हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आंखें खोले, हाथ हटा ले। हमें रोज यहां बताया जाता है कि हमें स्वयं के लिए ये दृढ़ संकल्प कर लेना है कि मैं एक शक्तिशाली चेतना और एक स्वस्थ चेतना, और ये सकारात्मक संकल्प, ये विचार मेरे शरीर के अंदर वो ऊर्जा पैदा करती है जहां हम स्वयं को प्रकाशित करते हैं सकारात्मक चिंतन के द्वारा। इसके साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि जैसे हम सभी आपस में एक दूसरे को जब देखते हैं, पहचानते हैं, तो आप सभी इस परिसर में आए तो आप सब देख रहे हैं कि आपके आसपास सेवा करने वाले जो यहाँ के भाई बहने हैं, उनको आप कौन से यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, कौन से यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, है ना? तो जैसे ये सफेद यूनिफॉर्म दिखाई देता है आप सभी के मन में कि हाँ, ये ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं, ये ओम शांति वाले भाई बहने हैं। अच्छा, फिर हम और आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो कई कलरफुल वाले ड्रेस वाले भी दिखते हैं, है ना? ड्रेस कोड से जैसे हम एक दूसरे को पहचानते हैं तो हम देखते हैं, अच्छा ये भी डेलीगेट्स हैं, ये हमारी तरह सुनने आए हैं, अच्छा ये भी हमारी तरह यहाँ सीखने आए हैं। तो हमारा दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति, अच्छा फिर और आगे हम उससे ऊपर की दृष्टि से देखते हैं, जैसे जैसे हमें बताया जाता है तो व्यक्ति को हम उनके वस्त्रों से पहचानते हैं, उनके भाषा से पहचानते हैं, उनके व्यवहार से पहचानते हैं। परंतु धीरे धीरे हमें यहाँ पर ये बात समझाई जाती है कि ये जो भौतिक चीजें हम जो इन आँखों से देख रहे हैं, इन आँखों से देखने के साथ साथ हमें अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र भी खोलना, अर्थात जैसे मैं अपने आप को एक चेतना के रूप में देखती हूँ तो मुझे सामने वाले को भी उस चेतना के रूप में देखना। हद की बातों से कॉन्शियसनेस ऑफ जो हमारी स्थूल बातें हैं, वस्तु वाली बातें हैं, उनसे निकल करके एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में हमें एक दूसरे को देखना। तो आध्यात्मिकता हमको हद से बेहद की ओर, लिमिटेशन से यूनिवर्सल की तरफ लेकर जाती है, जहां हम देखते हैं कि हम स्वयं भी अपने आप को एक एनर्जी के रूप में महसूस करते हैं और उसके साथ साथ हम दूसरों को भी उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखते हैं। तो जब हम आपस में एक दूसरे को ऊर्जा के साथ देखते हैं, सकारात्मकता के साथ देखते हैं, तो सकारात्मकता कभी भी लिमिटेशंस में नहीं होती है। वो कैसी होती है? अनलिमिटेड, बेहद, है ना? उसका कोई भी बॉन्डेज नहीं होता है, बाउंड्रीज नहीं होती है। वो हमेशा यूनिवर्सली बहुत प्यार से सभी के लिए जो है खुली हुई होती है, अवेलेबल होती है। तो ऐसे ही हमें हर दिन यहाँ पर, है ना, इस भौतिक वातावरण से, भौतिक बातों से निकल करके उस सूक्ष्म बातों को देखने की बातें जो है यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो ये अध्यात्म से हम सीखेंगे कि कैसे हमें हर व्यक्ति से मिलते हुए भी हमें उनकी विशेषताओं को देखना है, कैसे उनके साथ बात करते हुए उनके गुणों को लेना है। तो ये चीजें भी हमें आध्यात्मिकता में सीखने को मिलती है, जिसके लिए हम फिर से एक प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगी कि एक बार हम सेंटर्स पर जैसे मेडिटेशन का कोर्स करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भाई थे जो कोर्स के लिए आए। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोर्स किया, क्लास करने लगे और एक दिन उन्होंने कहा कि दीदी हमें ना अपना अनुभव शेयर करना है। तो कहा ठीक है, आप सबको बताएं। तो उन्होंने कहा, जब सभी भाई बहनों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने बैठे, तो उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ कोर्स करने के लिए आए थे तो वो अपनी कोई एक बड़ी परिस्थिति से जूझ रहे थे और वो परिस्थिति के कारण स्ट्रेस में थे, जिसके कारण उनके परिवार के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो हर एक के साथ, चाहे कंपनी में, चाहे मार्केट में, चाहे घर में, वो चारों ही तरफ से उस टेंशन को महसूस कर रहे थे। लेकिन जब मैं आया तो उस दिन से मुझे रोज बताया जाने लगा कि मुझे रोज अपने आप को इस विचार में रखना है कि मैं प्यार से भरपूर हूँ, मैं प्यार से भरपूर हूँ, मैं एक सकारात्मक ऊर्जा हूँ, मैं एक शुद्ध ऊर्जा हूँ। रोज मुझे ये बातें बताई जाने लगी और मैं ये रोज प्रैक्टिस करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। जैसे जैसे मैं इसका अभ्यास करता गया तो मेरे अंदर आया कि देखो, जब मैं फैक्ट्री में जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, फैक्ट्री में जाता हूँ, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, तो मेरा लोगों के देखने का तरीका क्या होता है। तो जैसे ही फैक्ट्री पर सिक्योरिटी गार्ड मेरे को सलाम करते हैं, सलाम साहब, मैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने उनको एक सिक्योरिटी, उनकी पोजीशन की दृष्टि से देखा। फिर हम आगे गए, हमें रिसेप्शनिस्ट मिलते हैं, हम उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, वर्कर्स मिलते हैं, स्टाफ मिलता है, उनकी तरह हम उनको ट्रीट करते हैं। हमारे पार्टनर्स मिलते हैं, हम उनको सामने से उठकर हम उनको वेलकम करते हैं, शेक हैंड करते हैं। और जब कोई डीलर्स या व्यक्ति हमसे मिलने आते हैं तो हम उनकी आवभगत करते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि गेट से लेकर के पूरे दिन भर में मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ, सबके साथ मेरा व्यवहार, उनके पोजीशन, उनके जो कार्य करने की क्षमता और उनकी बुद्धिमत्ता के आधार से मैं उनके साथ डीलिंग्स कर रहा हूँ, लेन देन कर रहा हूँ, बातों की व्यवहार कर रहा हूँ। परंतु जब मैं मेडिटेशन सेंटर पर जाता हूँ तो वहाँ किसी की ड्रेस नहीं देखी जाती, वहाँ किसी की पोजीशन नहीं देखी जा रही है, वहाँ ये नहीं देखा गया कि मैं नया नया ब्रदर हूँ और यहाँ कई 12 साल से, 25 साल से, 50 साल से लोग हैं, सभी मुझे कैसे देख रहे हैं। मैं एक शुद्ध एनर्जी, मैं एक सकारात्मक एनर्जी हूँ। और उस दिन से मैंने भी हर एक व्यक्ति के साथ वैसे व्यवहार करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि एक शुद्ध एनर्जी है, ये एक सकारात्मक एनर्जी है। और जब मैं वैसे ही सिक्योरिटी वाले से, जैसे उसने सलाम ठोका इस तरह से, तो मैंने उनके पीठ पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक है, आप ठीक हो, सलाम, बहुत अच्छा। उस दिन से उसने मुझे, उसने बताया, सबके अनुभव में देखने लगा तो उसको ऐसा लगा साहब ने मुझे पूछा, साहब ने मुझसे बात की, मेरे लिए कहा, बहुत अच्छा। तो अब उसने देखा कि ये चीजें, चाहे वो फैक्ट्री में मिलने वाले वर्कर्स हैं, स्टाफ है, डीलर्स हैं, पार्टनर्स हैं, हर एक के लिए वो क्या सोच रहा है कि ये कौन है, ये कौन है, ये एक शुद्ध और एक सकारात्मक ऊर्जा है और मैं इनके साथ व्यवहार कर रहा हूं। जैसे ही उनके साथ वो प्रकार की डीलिंग्स करता चला गया, उसके स्ट्रेस वहां खत्म होने लगे, क्योंकि लोगों ने उसके साथ इन्वॉल्व होकर के कार्य करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ले ली और उसने बहुत प्यार से सबके साथ वो बातें शेयर करता गया, जिम्मेवारी देता गया। पहले उसको लगता था मैं रन कर रहा हूं, मेरे को सारा करना है, मुझे ही ऐसे करना है, लेकिन अब क्या हो गया, अब कौन कर रहा है सब कुछ, सब कुछ सारे मिलकर कर रहे हैं। तो ये भावना, ये विचार पूरे फैक्ट्री में, पूरे घर में क्या परिवर्तन लेकर के आ गया कि मुझे अकेले नहीं, मुझे सबके साथ मिलकर के करना है। तो इस भावना ने, इस शुद्ध संकल्पों ने उसके सारे स्ट्रेस को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो एक सकारात्मक और शुद्ध विचार हमें पोजीशन, ड्रेस कोड, रोल, इस कॉन्शियसनेस से ऊपर ले जाकर हमें उस व्यक्ति से उसकी सकारात्मक एनर्जी और शुद्ध एनर्जी को देखना सिखाता है। तो हम जो यहाँ आकर के इतने दिन जो भी हम करने वाले हैं वो इस बात का अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से हम एक बार अपने हाथों को सभी रब करेंगे, अपनी आंखें बंद करें और हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, मैं एक सकारात्मक शक्ति हूं, मैं एक शुद्ध शक्ति हूं, मैं एक सकारात्मक शक्ति हूं, मैं एक शुद्ध शक्ति हूं, मैं एक सकारात्मक शक्ति हूं, मैं एक शुद्ध शक्ति हूं। अपने दोनों हाथों को आंखों पर लगा लें। महसूस करें उस ऊर्जा को। इन आंखों से सकारात्मक और शुद्ध ऊर्जा हमारी आंखों में जा रही है। मेरी आंखें हर एक की विशेषता, अपने गुण, देखने की रोशनी तेज होती जा रही है। अपने हाथों को नीचे ले लेंगे, आंखें बंद रखेंगे विजुअलाइज करें दोनों आंखों के बीच में मैं एक चमकता हुआ सकारात्मक प्रकाश हूं। मैं शुद्धता से भरपूर एक ऊर्जा हूं। ओम शांति। आंखें खोलें। अच्छा, ये प्रैक्टिस करने में कितना समय लगा बता सकते हैं? कितना समय लगा? हाँ, 3 मिनट, 2 मिनट? बहने कितना समय लगा? हाँ, ये टाइम मिल सकता है घरों में, ऑफिस में? यस और नो? ये मिल सकता है? डिफिकल्ट नहीं ना? इसके लिए तो नहीं कह सकते टाइम नहीं है? कह सकते? नहीं कह सकते। तो आध्यात्मिकता में हमें ये बताया जाता है कि कर्म करते 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 बीच बीच में, जैसे हम पानी पीते हैं, चाय कॉफी ले लेते हैं, वैसे वैसे हमें अपने आप को ये शुद्ध और सकारात्मक संकल्प देना है। वैसे ही हम देखते हैं कि हम सभी के जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं हम सभी? आप बताएंगे सभी क्या चाहते हैं हम? हाँ, शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ, सब शांति चाहते हैं। किसी को खुशी चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, कोई है ऐसे? अच्छा, कोई कोई है ना? हाँ, अच्छा, यहाँ भी है। ओके, ऐसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य तो होता है कि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। हम चाहते हैं कि हम सब प्यार से रहें, खुशी से रहें, सदा हम स्माइल फेस रहें। लक्ष्य तो हमारा बहुत सुंदर होता है, पर उसमें क्या हो जाता है, हमें ये देखने में आता है कि जैसे एक बार एक पेशेंट डॉक्टर से मिल रहे थे, तो डॉक्टर से सारी चीजें डायग्नोस करके, उनके साथ बातचीत करके, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आपका सब कुछ ठीक है, बस आप ऐसा करना, रात्रि के समय, शाम के समय आप लाइट फूड लेना, खिचड़ी। आपको ध्यान रखना है कि रोज शाम को आपको खिचड़ी खानी है। तो कहा ठीक है, खिचड़ी खानी है। अच्छा डॉक्टर, ये खिचड़ी तो कहा आप घर में बताना, लोग आपको खिचड़ी बना करके जरूर खिलाएंगे। खिचड़ी ना? कहा हाँ खिचड़ी। तो अंदर अंदर उसको लगता था कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम, तो वो याद करता करता खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। हाँ, और अब क्या हो गया कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तो कोई चीज में अटक गया, किसी से टकरा गया, और उसकी खिचड़ी जो है ना वो बदल गई। तो जैसे ही आगे जाता है, हाँ, तो खा चिड़ी का जाप करने लगता है, वो याद करते हुए जाने लगता है। अब उसके घर तक पहुंचने तक काफी सारे स्टॉप्स आते हैं, स्टेशन आते हैं, तो वो हर स्टेशन पर किसी न किसी से मिलता है। तो सबसे पहला स्टेशन जो है वो एक एग्रीकल्चरल फार्म है, जहाँ किसान जो है वो उसका अनाज, खेत पक गया है तो वो चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए अपनी मेहनत कर रहा है, और ये भाई कहते हुए आ रहा है खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। किसान ने कहा अच्छा आप ये नहीं बोलना? तो कहा नहीं, डॉक्टर ने मुझे सिखाया है, मुझे घर जाकर खा चिड़ी करना है। तो कहा ऐसे नहीं है, ये मेरा एरिया है ना, मेरे एरिया में आपको मेरी बातें सीखनी पड़ेंगी, तो यहाँ खा चिड़ी नहीं बोलना है, यहाँ उड़ चिड़ी कहना है। तो कहा अरे डॉक्टर, कहा ना आपको कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो थोड़ा सा वो डर जाता है, बहस होती है, सब होता है, पर फिर वो स्वीकार कर लेता है। अब वो सेंटेंस क्या हो गया, क्या हो गया? उड़चिड़ी। अब आगे जाता है, एक शिकारी जो है कबूतरों को फंसाने के लिए, तोतों चिड़ियाओं को फंसाने के लिए दाना डालकर जाल बिछाया हुआ है, और ये भाई क्या कह रहे हैं, उड़चिड़ी। अब शिकारी को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। देखो कितना आसान है ना। तो कहा कि आपको ऐसे नहीं कहना है, अरे अभी तो मैं तो कुछ और ही बोल रहा था, पर किसान ने मुझे ये सिखाया, ये बोलना है। नहीं, आपको ऐसे नहीं बात करनी है, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ सबको फंसाने के लिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो कहा अच्छा, तो कहा ये कहो, आते जाओ फंसते जाओ। अब क्या करना है इसको, ये भाई ने क्या बोलना है, आते जाओ फंसते जाओ। अब ये आगे पहुंचता है, तो आगे पहुंचने पर एक जगह ऐसा आता है कि जहां कुछ चोर चोरी करने के लिए अंदर घुसे हैं, और ये भाई क्या कह रहे हैं, आते जाओ फंसते जाओ। अब चोरों ने इनको पकड़ लिया कि आप ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है। फिर उन्होंने छुरी दिखाई कि बिल्कुल नहीं, आपको ये कहना है कि ये दिन कभी ना आए। क्या कहना है, ये दिन कभी ना आए। तो कहा ठीक है जी साहब, मैं ऐसे ही बात करूंगा, है ना। ऐसे कहकर आगे निकला। अब आगे पहुंचा तो वहां किसी की बारात जा रही थी, और ये भाई क्या कह रहे हैं, ये दिन कभी ना आए। तो बारातियों ने उसको एक जगह खड़ा करके बोला, देख भाई ये शुभ कार्य हो रहा है, यहाँ आपको ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे कहना ये दिन रोज आए, ये दिन ऐसे खुशी के दिन हर रोज आए करके ऐसे। तो कहा अच्छा, तो कहा हाँ ऐसे बात करनी। कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कहूंगा। अब वो पहुंच जाता है अपने गांव, अपने डेस्टिनेशन पर, और अब वहां क्या हो रहा है, वहां से एक अर्थी निकल रही है, और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ऐसे खुशी के दिन। तो वो अर्थी वालों ने, जो यात्रा वाले थे, उन्होंने कहा कि अभी इसको यहाँ साइड में करो, पहले इसको निपटो। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसको इतना मारो, मार मार के इसकी खिचड़ी बना दो। तो उसने कहा अच्छा हाँ, मुझे तो क्या खाना था, ठीक है अच्छा, तो हम सब भी क्या चाहते थे, शांति, प्यार, खुशी, सुख चाहते थे, पर हमारे जीवन में भी बहुत सारे स्टॉप्स थे, हाँ बहुत सारे स्टेशन्स हैं, है ना। कोई ये कहते हैं, कोई ये कहते हैं, है ना, मम्मी पापा ने कहा, दोस्तों ने कहा, घर वालों ने, घर वालियों ने कहा, बच्चों ने कहा, फ्रेंड सर्कल ने कहा, सोसाइटी ने कहा, और हम बनते गए, और क्या बन गए, जो बन गए उसमें शांति है नहीं है, प्यार है नहीं है। इसीलिए तो हम सब यहाँ पर उस शांति, प्यार, सुख, आनंद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमें वो मिल जाए, परमानेंट हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए जो कई बार कई स्थानों पर जाकर हम जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें क्या इकट्ठा करना है, हम कौन हैं और क्या लेना है, और आगे चलते रहना है, इकट्ठा करके हमें रुकना नहीं है। तो जैसे जैसे हम अपने अंदर में अपने आप को समझ के पॉजिटिविटी को, विशेषताओं को, अपने गुणों को इकट्ठा करते, नेगेटिविटी को हमें बाहर निकालते जाना, जैसे 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 बात आती गई कि किसान को क्या आएगा, शिकारी को क्या आएगा, तो सबने कहा गुस्सा आएगा। तो अब हमें अपने जीवन से ये नेगेटिव बातें निकालनी है, तो इसके लिए सतत हमें क्या करना है, तो जैसे हम देखते हैं कि एक बाल्टी में खराब पानी है, और उस पानी को हमें निकालना तो नहीं है, पर उसमें साफ पानी भरना है, पानी को हमें पूरा साफ पानी से भर देना है, तो क्या करेंगे। तो बताया कि उसमें साफ पानी का नल चालू कर देना, जिससे साफ पानी भरता जाएगा और खराब पानी बाहर निकलता जाता है। तो उसी तरह से आध्यात्मिकता एक स्वच्छ ज्ञान है, जितना हम वो स्वच्छ ज्ञान बार बार अपने अंदर हर रोज डालते जाते हैं, तो हमारे अंदर का जो ये नेगेटिव और साधारणता है वो समाप्त होती जाती है, और हमारे अंदर सकारात्मकता का चलन शुरू हो जाता है। तो आध्यात्मिकता हमें एक जगह रुकना नहीं सिखाती है, वो हमें आगे बढ़ते रहना सिखाती है, चाहे फिर हम मन के साथ, चाहे शरीर के साथ, चाहे संबंधों के साथ। तो आध्यात्मिकता में सफलता है, सक्सेस है। तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ मानसिक एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे और उसके साथ साथ हम शारीरिक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मैं अपने आदरणीय भाइयों को बुलाती हूँ, सुनील भाई, लोकेश भाई आए और भाई वो गीत बजाएंगे। तो हम सभी थोड़ा समय के लिए शारीरिक एक्सरसाइज भी करेंगे, है ना? तो हम देखते हैं कि हमें कभी भी कहीं भी रुकना नहीं है, क्योंकि जब हम रुक जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, जैसे ठहरा हुआ पानी कैसे हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ गंदगी जमा हो जाती है। तो हमें भी क्या करना है, ठहरना नहीं है लेकिन सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, गीत शुरू करें। थोड़ा आपस में डिस्टेंस रखना।
को दे राधे जीवन के नहार जीने वाले बात मेरी तू मान रे मतवाले हर गम को तू अपना कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल लहरा चल दुनिया के सुख दुख को बिखरा चल जीवन के नहार जीने वाले बात मेरी तू मान ले मत वाले
शांति। थैंक यू दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू। बैठ जाए सभी बैठ जाए। तो जैसे हम सभी ने शारीरिक एक्सरसाइज की, कैसा महसूस कर रहे हैं सभी? है ना, बहुत अच्छा, हल्का महसूस कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, है ना? तो वैसे ही जैसे शरीर को एक्सरसाइज देकर हम शरीर को रिलैक्स करते हैं, फ्रेश करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी हमें इस सकारात्मक चिंतन के द्वारा रोज रोज अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस देकर हमें उसे फ्रेश रखना है, हल्का रखना है। और यही कार्य हम अपने दिनचर्या के अंदर भी बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आपस में जब हम मिलते हैं और मिलते हैं तो कई सारी बातें हम शेयर करते हैं, है ना? जैसे हम आपस में मिले तो हमने एक दूसरे का नाम पूछा होगा, कहाँ से आए होंगे पूछा होगा, क्या पर्पज है, कितने दिन से हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें हमने पूछी होंगी, एक दूसरे से शेयर की होंगी। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं। आप देखेंगे कि दो दिन में, तीन दिन में आपस में साथ में बैठने वाले, भले हम एक कमरे में नहीं होंगे, आस पड़ोस के राज्य वाले भी होंगे, पर हम एक दूसरे के लिए सीट्स रखेंगे, एक दूसरे के कमरे में जाकर के भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमारे अंदर में केयर शुरू हो जाती है। और केयर और शेयर करते करते हम इंस्पायर भी होते हैं, है ना? जैसे हम कहते हैं कि माताएं भी, बहनें भी कभी कोई नई रेसिपी सीखती हैं और कुछ नया बनाती हैं, कुछ अच्छा बनाती हैं, तो हम पूछते हैं आपने इसे कैसे बनाया, क्या किया, और घर में जाकर तुरंत उसका प्रयोग करते हैं। वैसे ही बिजनेस में हमारे सभी भाई कि ये मार्केटिंग, ये एडवर्टाइजमेंट, अच्छा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इस प्रोडक्ट में क्या नया आपने ऐड किया, तो ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं, तो हम इंस्पायर्ड होते हैं। और जब हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं तो हम एक दूसरे के लिए कल्याण की भावनाएं सोचते हैं, तो हमने स्वयं के लिए भी अच्छा सोचा, एक दूसरे के लिए भी अच्छा सोचते। तो ऐसे ही हमें कुछ कुछ प्रयोग अपने जीवन में भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी घरों से ऑफिस के लिए, कंपनी के लिए, जॉब के लिए, है ना, मार्केटिंग के लिए, अच्छा बच्चे कभी स्कूल में जा रहे हैं, तो ये जब आपस में हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमारी डेली की दिनचर्या कैसे होती है कि हम भागदौड़ में होते हैं, टिफिन रेडी कर रहे होते हैं, ऑफिस की तैयारी कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कॉल पर हम जाते हैं, बच्चे बसेस आ गई हैं और अपने यूनिफॉर्म बैग्स वगैरह सब एंड मोमेंट पे पैक करते, भागदौड़ में हम घर से बाहर निकलते हैं। तो बहुत अच्छी बात हमने एक देखी, जैसे भारत में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में, फॉरेन में भी ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका बहुत समय पहले हमने वर्णन सुना, महसूस भी किया, पॉज फॉर पीस। शांति तो हम सब चाहते हैं, पर उसके लिए क्या लेना है? पॉज। जैसे कोई भी चीज को हमें है ना ध्यान से समझना होता है तो हम कंटिन्यू उसको नहीं सुनते, हम पॉज दे करके आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब भी हम कोई कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं, है ना, चाहे कोई भी जा रहे हैं, तो हमें घर वालों से एक दूसरे से शेयर करना है ना, एक दूसरे को पॉजिटिव बातें बतानी है, पॉजिटिव शब्दों की बातें कहनी है। कई बार हम देखते हैं कि भाई घर से ऑफिस के लिए जाते हैं तो अंदर में बहनों को चिंता होती है कि उनका अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे हो रहा है, आज वो बहुत बड़ा एक व्यक्ति आने वाला है, उनके साथ डीलिंग होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, पता नहीं कैसे होगा, नहीं सब अच्छा हो, ऐसी दुविधा, ऐसी बातें हमारे मन में चल रही होती हैं और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस होता है कि सब ठीक हो रहा होगा ना, सब ठीक हो रहा होगा ना, तो वो एक स्ट्रेस की चीज बन जाती है। ऐसे ही अगर घर में कोई बात होगी, भाई घर से बाहर जा रहे हैं, तो उसको घर का स्ट्रेस होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बच्चे के कारण परेशान थी, वो रिपोर्ट्स के कारण परेशान थी। तो जब जिस स्थान पर हम जा रहे हैं हम क्या लेकर जा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे साथ कि हम क्या लेकर चल रहे हैं और हमें साथ में क्या लेकर के चलना है। तो आध्यात्मिकता हमको ये सिखाती है कि जैसे हमने शारीरिक व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को हल्का रखा, वैसे मन के व्यायाम द्वारा, मन की एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने जीवन को भी हल्का रखें, शक्तिशाली रखें, स्वस्थ रखें। और इसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना है, स्वयं को दुआओं से भरना है, ब्लेसिंग से भरना है, जिसके लिए हमने आगे के दो शुरू के अभ्यास किए, मैं शक्तिशाली हूं और दूसरा मैं स्वस्थ हूं, ये मैंने स्वयं के लिए भरा। दूसरा जब हमने एक्सरसाइज जो प्रयास किया वो था कि मैं एक शक्ति हूं, मैं एक शुद्ध शक्ति हूं, इसका प्रयोग हमने किया। और अब तीसरा प्रयोग जो हमें आपस में अपने संबंधों में करना है, तो हम सभी अपने हाथों को रब करेंगे और हमारे पीछे पीछे कहेंगे, मैं संतुष्ट हूं, मैं सुखी हूं, मैं भरपूर हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं सुखी हूं, मैं भरपूर हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं सुखी हूं, मैं भरपूर हूं। हाँ, अभी दो दो की जोड़ी बना लेंगे और एक दूसरे से हाथ शेक इन करेंगे, पर एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं है, एक दूसरे से हाथ मिलाना है। अनिता बेन आप आ जाएंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाना है, चाहे तो आप दो दो की जोड़ी में खड़े हो जाएं, दो दो की जोड़ी में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को देखना, अच्छा अब कहना मैं आपसे सुखी हूं, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को देखते हुए स्माइल फेस के साथ, मैं आपसे संतुष्ट हूं, मैं आपसे भरपूर हूं, आप मुझसे सुखी हैं, आप मुझसे संतुष्ट हैं, आप मुझसे भरपूर हैं, आज का आपका दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज आपके सारे काम शांति से हो जाने वाले हैं, आज आप सारा दिन हंसते हुए चेहरे से रहेंगे, हम भरपूर हैं, हम सुखी हैं, हम संतुष्ट हैं। हाथ हटा दे, बैठ जाएं। क्या किया हमने? हाँ, क्या किया हमने? हाँ, ठीक है, घर से निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले घर वालों के साथ, अपने माता पिता, वाइफ, हस्बैंड, बच्चों के साथ ये शब्द दिया। क्या दिया हमने उनको? क्या दिया हमने? दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी। कुछ भी होगा आपके मन में ये बात रहेगी कि नहीं, उसके साथ दुआएं गई हैं। बच्चे के साथ स्कूल में कौन गया है? दुआएं गई हैं, ब्लेसिंग्स गई हैं। वाइफ के साथ घर में कौन है? दुआएं। माँ बाप के साथ घर में कौन है? दुआएं, ब्लेसिंग्स हैं। हस्बैंड के साथ जॉब में, ऑफिस में कौन गया है? दुआएं गई हैं। तो एक दूसरे के साथ किसको ट्रैवल करने के लिए भेज दिया? दुआओं को, टेंशन को नहीं भेजा। तो टेंशन को भेजेंगे तो टेंशन होगा, ब्लेसिंग्स को भेजेंगे, दुआओं को भेजेंगे तो कैसे काम होंगे? दुआओं नहीं भी हुए, नहीं भी हुए तो उनको दुआओं की शक्ति मदद करती है ना? तो स्ट्रेस नाम का शब्द क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं? किसके लिए बहुत सारा टाइम लग रहा है? हो सकता है घर में ये? कौन कौन कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? आज से ही करना है ना, कमरे से निकलने से, यहां से बाहर जाने से, एक दूसरे से ये शेयर करने की आदत डालना। तो ये तो कर सकते हैं ना, मुश्किल नहीं है ना। और अंतिम बात जो हमने पहले पहले कही थी कि जब मैं यहां आई थी और जो मैंने स्लोगन पढ़ा था कि यदि मैं ईश्वर का ध्यान करूंगी तो ईश्वर मेरा ध्यान रखेंगे, तो एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि जैसे एक बार एक फ्लाइट में कई सारे टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से वो फ्लाइट उड़ना शुरू किया और आकाश में उड़ते हुए कुछ घंटों के बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि बाहर का जो मौसम है वो थोड़ा इस तरह से हो गया है कि अभी हम ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी जो है वो सर्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही बैठना है, अभी आपको ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी कुछ नहीं मिलेगा, हम वो इंटरनली वो सर्व नहीं कर सकते, किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब ठीक थे, कहा ओके ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे। कुछ समय के बाद वापस कुछ अनाउंसमेंट हुई कि अभी ऐसा हो रहा है कि बाहर का वातावरण धीरे धीरे और बदलता जा रहा है, तो अभी हमको फ्लाइट में कुछ घंटे और बढ़ाने पड़ेंगे, हम अभी लैंड नहीं कर सकते हैं, ये फ्लाइट जो है अभी आकाश में ही है, पर हम कोई भी चीज आपको पूरा दिन सर्व नहीं कर सकेंगे। बिना नाश्ते, बिना टी कॉफी, बिना भोजन के सारे यात्री फ्लाइट के अंदर हैं और सबका धीरे 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 पेशेंस जो है वो खत्म होते होते वो थॉट अंदर में चल रहा है कि अभी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये टिकट ही फ्लाइट की क्यों मिली, ये वाला एयरलाइंस क्यों चॉइस किया, है ना, ऐसे कई सारे अंदर अंदर थॉट आने लगे। फिर धीरे अनाउंसमेंट हुई वापस एक बार कि अभी वो जो है बाहर का वातावरण ऐसे है कि फ्लाइट जो है लैंड बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको 2-3 चक्कर ऊपर ही लगाने पड़ेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं, परंतु माना आप लोग अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध करके रखना, बस आपको फ्लाइट में ही वो पूरा जो है टाइम गुजारना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एंग्जाइटी बढ़ती गई, हर एक व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया और हर एक के अंदर परेशानी थे, तो फ्लाइट के अंदर एसी में थे लेकिन कईयों को पसीना आने लगा, कईयों के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगे, कई लोग जो है अलग अलग प्रकार की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे और माहौल एकदम धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। लेकिन एक व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा था कि एक बच्चा है वो बहुत प्यार से खुशी से बैठा है, वो सबको देख रहा है कि सब क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति ने उसके पास जाकर पूछा कि बच्चे तुमको चिंता नहीं हो रही है, देखो ये सब ऐसे हो रहा है, ये अनाउंसमेंट हुआ, आपने सुना? तो कहा हाँ मैंने सुना और मैं समझ भी रहा हूँ, इसलिए मैं ये देख भी रहा हूँ कि सब किस तरह से चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो कहा आपको चिंता नहीं हो रही है? तो कहा नहीं, मुझे चिंता नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि अंकल आपको पता है ये जो फ्लाइट चला रहा है ना, वो कैप्टन मेरा डैडी है। हाँ, और मेरा डैडी को पता है कि मेरे को उसको सेफ रखना है। तो हम सबका कैप्टन कौन है? कौन है, है ना? तो इसीलिए कई बार जब हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी के, हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ जो धीरे धीरे आज शाम से आपसे मिलना शुरू करेंगे, तो जब भी हमने उनके सानिध्य में अनुभव किया, उनसे शिक्षाएं ली, उनसे जो जीवन को सीखा, तो उन्होंने हमेशा हमको ये बात बताई, बच्चे बने रहना माना बच्चे हुए रहना, सदैव अपने आप को ईश्वर की संतान समझना। तो जब मेरे जीवन को चलाने वाला कैप्टन ईश्वर है, वो खुदा दोस्त है, वो मालिक है, तो मुझे मेरे लिए चिंता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसे मुझे सही दिशा की तरफ लेकर जाना है। परंतु बस बात इतनी है कि दृढ़ संकल्प रखना है, दृढ़ निश्चय रखना है, सकारात्मक संकल्प रखना है कि मैं उस ईश्वर की संतान, सकारात्मक ऊर्जा, और मुझे उस खुदा दोस्त की हर बात माननी है। क्या करनी है? उस खुदा दोस्त की हर शिक्षा, हर बात को अपने जीवन में अपनानी है। जब मैं उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाती जाऊंगी, तो मेरा जीवन बहुत सहज हो जाएगा, जैसे उस श्रापित दुनिया से वरदानी, जो वो जंगल था, वो क्या बन गया? वरदानी भूमि बन गई, ब्लेसिंग से भरपूर शहर बन गया। तो मेरा जीवन उस श्रापित जंगल से निकलकर, राज्य से निकलकर, एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग से भरपूर शहर में आ जाएगा। तो इसीलिए हमें भी बच्चे बनकर उस ईश्वर की बातों को अपने जीवन में सहर्ष स्वीकार करना है और अपने जीवन को आगे लेकर के जाना है। ठीक है ना? तो अभी हम कुछ समय के लिए फिर से प्रैक्टिस करेंगे। सभी अपने हाथों को रब करेंगे और कहेंगे, मैं प्यार से भरपूर हूं, मैं प्यार से भरपूर हूं, मैं प्यार से भरपूर हूं। अपने दोनों हाथ अपने सिर पर लगा दें, आंखें बंद करें। महसूस करें परमात्मा प्यार, ईश्वर की दुआएं, मेरे माता पिता के ब्लेसिंग्स, गुरुजनों के आशीर्वाद, इन हाथों से मेरे अंदर समा रहे हैं। मेरा ब्रेन, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरे हाथ पैर शरीर, ईश्वर की दुआओं से, परमात्म प्यार से भरा हुआ है। मैं परमात्म प्यार के प्रकाश में बैठा हुआ, ईश्वर की गोद में सुरक्षित, आंखें बंद रखेंगे और हाथों को नीचे ले लेंगे। महसूस करेंगे स्वयं को, मैं ईश्वर की गोद में सुरक्षित, शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा, मैं ईश्वर की श्रेष्ठ संतान हूं। उनकी दुआओं से सजी हुई उनके प्यार में पलने वाली एक शुद्ध शक्तिशाली स्वस्थ सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें। ये ऊर्जा मेरे द्वारा मेरे परिवार तक पहुंच रही है। ये दुआएं हमारे घरों तक पहुंच रही है। परमात्मा प्यार की शक्ति मेरे कर्तव्यों तक, मेरे कर्मों तक पहुंच रही है। ईश्वर की दिव्य शक्तियां मेरे आगे आगे चल रही है और मेरे रास्ते को सहज, सरल और सक्सेसफुल बना रही है। सभी बोलेंगे ओम शांति।